पेश हैं आज के मुख्य समाचार वैशाली जैन के साथ। डिप्टी प्रधानमंत्री के लीक हुए संदेशों के बाद प्रधानमंत्री ने राजनीति को बताया क्रूर व्यवसाय। भारत में सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का हुआ निधन। और जर्मनी की 5 बार स्वर्ण विजेता क्लॉडिया पेचस्टीन बनी 8 शरद ओलंपिक्स में खेलने वाली पहली महिला। और अब खबरें विस्तार से। डिप्टी प्रधानमंत्री बार्नबी जॉयस के कुछ संदेश लीक हुए हैं जिनमें प्रधानमंत्री मॉरिसन को पाखंडी और झूठा बताया गया है। इस वाक्य के बाद प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने राजनीति को एक क्रूर व्यवसाय बताया है। श्री जॉयस ने पिछले साल मार्च में दिए अपने इन वक्तव्यों के लिए क्षमा मांगी है और इस्तीफे की पेशकश भी की है, लेकिन प्रधानमंत्री ने इस इस्तीफे को नामंजूर कर दिया है। इसी के साथ श्री मॉरिसन ने कहा है कि उनके और श्री जॉयस के पूर्व में संबंध अच्छे नहीं रहे हैं, लेकिन भविष्य में वे दोनों साथ काम करते रहेंगे। श्री मॉरिसन का कहना है कि वे एक व्यक्ति के नाराज या कटु होने पर उनसे द्वेष भावना नहीं रख सकते।
Politics is a brutal business. And anyone who pretends it's not, and anybody who pretends that from time to time people don't get angry or bitter or don't act like other human beings, then if you can't accept and understand each other's frailties and be forgiving in those circumstances, then frankly that says a lot more about you than it does about others.
रुके हुए प्रवासी कार्यक्रम और सरकारी योजनाओं की कमी के चलते ऑस्ट्रेलिया भर के विविध समुदायों की सेवा करने वाले एस्ट केयर संस्थानों में स्टाफ की भारी कमी हो गई है। 140 स्वयंसेवियों और 230 वेतनभोगी स्टाफ के साथ ऑस्ट्रेलियन मल्टीकल्चरल कम्युनिटी सर्विसेज AMCS विक्टोरिया के विविध समुदायों के बुजुर्गों का ख्याल पिछले 39 सालों से रख रहे हैं, पर AMCS की CEO एलिजाबेथ ट्रस्ट का कहना है कि ये संस्था विविध समुदायों के प्रवासी जो विविध भाषाएं बोलते समझते हैं पर अपने कार्य के लिए निर्भर है। वे कहती हैं कि कोरोना काल से पहले ऑस्ट्रेलिया 80,000 से 2,00,000 तक प्रवासियों को स्वीकारता था, लेकिन ये आंकड़ा अब 40,000 के करीब ही है। इससे होम एंड एज्ड केयर के क्षेत्र में खासकर विविध समुदायों में दबाव बढ़ा है। उनका कहना है कि स्टाफ की ये कमी अभूतपूर्व है।
I've been working in multicultural community services for 30 years, and I have never seen this type of workforce shortages. So we have seniors who are asking us to help them live at home and support them. And unfortunately, we are really struggling to recruit enough staff.
न्यू साउथ वेल्स में हजारों विकलांग व्यक्तियों और उनके सहायता कर्मियों में 3,00,000 COVID-19 रैपिड एंटीजन टेस्ट किटें वितरित की जाएंगी। राज्य की डिसेबिलिटी मंत्री नताशा मैक्लेरन जोन्स का कहना है कि इन टेस्ट किटों से विकलांगता व्यवस्थाओं में रह रहे और काम कर रहे लोगों की सुरक्षा होगी। यह योजना नेशनल डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम यानी NDIS के लाभकर्ताओं को दी जाने वाली किटों के समर्थन में शुरू की जाएगी। इसका अर्थ यह होगा कि करीब 9,000 विकलांगता व्यवस्थाओं में रह रहे और काम कर रहे लोगों को अपने निकट ही जांच किटें मिल जाएंगी। वहीं न्यू साउथ वेल्स में आज 28 कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की गई हैं और राज्य में 7,893 नए कोरोना मामले सामने आए हैं। राज्य के अस्पतालों में इस बीमारी के चलते 2,321 लोग भर्ती हैं, जिनमें से 147 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। वहीं विक्टोरिया ने आज 7,169 नए कोरोना मामले और 6 कोरोना संबंधी मृत्यु दर्ज की हैं। 652 संक्रमित अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें से 73 गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। राज्य में 28 लोग कोरोना के चलते वेंटिलेटर पर हैं। दूसरी तरफ क्वींसलैंड ने आज 9 कोरोना मृत्यु और 5,746 नए मामले दर्ज किए हैं। राज्य में 727 संक्रमित अस्पतालों में भर्ती हैं। इसी के साथ राज्य में कुल कोरोना मृत्यु का आंकड़ा 277 हो गया है। क्वींसलैंड के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जॉन जेराड का कहना है कि वे बुजुर्ग वर्ग जिन्होंने अभी तक अपनी बूस्टर खुराकें नहीं ली हैं मृत्यु के सबसे ज्यादा खतरे में हैं। उन्होंने साथ ही यह भी कहा कि सार्वजनिक अस्पतालों में संक्रमितों की संख्या घटी है।
The good news is in the hospitals we have had a further substantial reduction in the number of inpatients in public hospitals down to 663 from 727 yesterday.
हालांकि निजी अस्पतालों में अब भी 63 संक्रमित ही भर्ती हैं, जिनमें से दो गहन चिकित्सा केंद्र में देखभाल पा रहे हैं। तस्मानिया ने एक कोविड मृत्यु और 471 नए कोरोना संक्रमण दर्ज किए हैं। दिसंबर में राज्य सीमाएं फिर खोलने के बाद तस्मानिया में अब तक 7 कोरोना मृत्यु दर्ज हुई हैं। राज्य में एक व्यक्ति कोरोना के चलते गहन चिकित्सा केंद्र में भर्ती हैं। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरें। अमरीकी और ऑस्ट्रेलियाई सैन्य नेतृत्व ने रशिया के विरुद्ध यूक्रेन के लिए अपने समर्थन की पुष्टि की है। यह ऑस्ट्रेलियाई रक्षा मंत्री पीटर डटन और अमरीकी रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन तृतीय के बीच हुई टेलीफोन वार्ता के बाद आता है। अधिकारियों के बीच भारतीय प्रशांत इलाके में सुरक्षा और सहभागिता की चुनौतियों पर चर्चा हुई। इसी के साथ ऑकस के कार्य की समीक्षा भी की गई। इसके बाद जापान, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक त्रिभागीय सुरक्षा साझेदारी का महत्व भी चर्चा का विषय रहा। अमरीकी सचिव ने आईएस के खिलाफ उनकी मुहिम ऑपरेशन इनहेरिटिव रिजॉल्व में ऑस्ट्रेलिया के सहयोग का भी धन्यवाद अदा किया। इंग्लैंड की महारानी ने अपनी प्लैटिनम जुबली संदेश में डचेस ऑफ कॉर्नवेल को क्वीन कैमिला की उपाधि देने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि यह उनकी हार्दिक इच्छा है कि कैमिला को प्रिंस चार्ल्स के राजा बनने के बाद रानी कैमिला कहकर पुकारा जाए। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का यह राज सिंहासन पर 70वां साल है। उन्हें उम्मीद है कि उनके बाद कैमिला को रानी होने का सार्वजनिक समर्थन मिलेगा। इस दिन महारानी के पिता किंग जॉर्ज षष्ठम की बरसी भी होती है। उनको याद करते हुए रानी एलिजाबेथ द्वितीय ने 1947 में यूनाइटेड किंगडम और राष्ट्रमंडल की सेवा करने की अपनी शपथ को भी याद किया। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने महारानी एलिजाबेथ के राज्याभिषेक की 70वें साल की अभी स्वीकृति की है। उनका कहना है कि महारानी ने अपने सारे दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए संविधान के मूल्यों के प्रति अपना पूर्ण सम्मान बनाए रखा है। उनके शासनकाल में 15 ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्रियों ने देश की सेवा की है। इसमें पहले सर रॉबर्ट मेंजीज थे। श्री मॉरिसन ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि अपने कार्यकाल में वे रानी एलिजाबेथ द्वितीय से मिल सके।
I've had the great privilege to meet Her Majesty on several occasions, and I have never met anyone more impressive, more remarkable. Her wisdom, her kindness, her sense of beauty is something that I think all of us here in Australia can be very, very grateful for. And so to you, Your Majesty, from Australia, thank you for all your many years of service, and may God save the Queen.
और अब खबरें भारत से। भारत की सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर का 92 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे 8 जनवरी से बंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती थीं। उन्हें कोविड संक्रमण के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को एक मध्यम वर्गीय मराठी परिवार में हुआ था। मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में जन्मी लता पंडित दीनानाथ मंगेशकर की बड़ी बेटी थी। उनका पहला नाम हेमा था, मगर जन्म के 5 साल बाद माता पिता ने इनका नाम लता रख दिया। लता अपने सभी भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। मीना, आशा, उषा तथा हृदयनाथ उनसे छोटे थे। उनके पिता रंगमंच के कलाकार और गायक थे और वे एक मशहूर नाम थे। लता मंगेशकर को 2021 में सर्वोच्च भारतीय सम्मान भारत रत्न से नवाजा गया था और उनकी जीवन कथा लता सुरगाता के नाम से प्रकाशित हुई थी, जिसे स्वर्ण कमल से सम्मानित किया गया था। भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 1,27,000 नए मामले सामने आए हैं। वहीं पॉजिटिविटी रेट 8% के नीचे आ गया है। देश में अब पॉजिटिविटी रेट 7.98 है। भारत में वर्तमान में 13,31,648 सक्रिय कोरोना मामले हैं। वहीं रिकवरी रेट 95.64% दर्ज किया गया है। और अब डॉलर का हाल। आज यानी रविवार को ये खबर लिखे जाने तक एक ऑस्ट्रेलियाई डॉलर की भारतीय रुपयों में कीमत 52.78 रुपये और एक अमरीकी डॉलर की तुलना में कीमत 71 सेंट्स रही। और अब खबरें खेल के मैदान से। जर्मनी की 5 बार स्वर्ण विजेता क्लॉडिया पेचेस्टीन 8 शरद ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली पहली महिला बन गई हैं। 49 वर्षीय क्लॉडिया इन खेलों के समाप्त होने के 2 दिन बाद ही 50 वर्ष की पूर्ण होंगी और इसी के साथ वे इन शरद ओलंपिक खेलों में हिस्सा लेने वाली सबसे उम्रदराज महिला भी बन गई हैं। और अंत में एक नजर कल यानी सोमवार को देश के प्रमुख शहरों के मौसम के हाल पर। पर्थ में कल धूप छांव का मौसम रहेगा, यहाँ अधिकतम तापमान 24 जबकि न्यूनतम 16 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। एडिलेड में कल धूप ही धूप है, अधिकतम तापमान 33 जबकि न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। मेलबर्न में कल तेज धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 15 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। देश की राजधानी कैनबरा में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे, अधिकतम तापमान 21 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। सिडनी में हल्की बौछार पड़ सकती है, अधिकतम तापमान 25 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। ब्रिस्बेन में धूप छांव का मौसम रहेगा, यहां अधिकतम तापमान 29 जबकि न्यूनतम 19 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। डार्विन में कल तूफान के साथ बरसात की आशंका है, अधिकतम तापमान 31 जबकि न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। भारत की राजधानी नई दिल्ली में कल धूप खिली रहेगी, अधिकतम तापमान 23 जबकि न्यूनतम 11 डिग्री सेल्सियस रह सकता है। समाचार में आज इतना ही, नमस्कार।